वैसे जनकपुर में रहने वाली अनेक स्त्रियां की इच्छा थी कि हम भी राम के साथ विवाह करें। अनेक स्त्रियों ने कहा कि प्रभु आप तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, अनेक रानियों के साथ अनेक पत्नियां हो सकती हैं, आप हमारे साथ भी विवाह कीजिए। परंतु हमारे प्रभु इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में बंधे हैं। जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह कराने के लिए बहुत सुंदर आभूषण वस्त्र, एक छोटी सी कथा आपको कह दूं। जनक जी एक दर्जी के पास गए और जाकर कहा कि मेरी बेटी का विवाह है राम के साथ, तो राम के लिए दो जोड़ी वस्त्र को सिलाई करके दे दो। दर्जी ने कहा अब बिना माप लिए मैं कैसे सिलाई कर सकता हूं, नाप तो मुझे लेना होगा। क्योंकि दर्जी की इच्छा थी कि यदि राम हमारी दुकान में आ जाए या मैं राम के वहां चला जाऊं, परब्रह्म भगवान ईश्वर का स्पर्श मुझे हो जाए पट्टी से के द्वारा नापने में, तो मैं तो धनिया थी धन्य हो जाऊं। दर्जी की इच्छा हुई। जनक जी ने कहा नहीं, नाप तो आपको लेने नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही उनका फोटो देखकर कपड़े बना दो। बोले नहीं, नाप लेना होगा तो मत बनाओ, और बहुत सारे दर्जी है। बोले ठीक है मैं बना लेता हूं। लेकिन उस दर्जी को मन में अफसोस रह गया कि यार कपड़े तो बनाया परंतु नाप लेने नहीं मिला, नाप लेने नहीं मिला। भक्तों राम लीला में जितने भक्तों को अफसोस रहा, वे सभी भक्तों की इच्छा भगवान ने कृष्ण लीला में संपन्न की। अनेक जनकपुर की स्त्रियों की इच्छा भगवान कृष्ण ने गोपियों को सौभाग्य देकर संपन्न किया। और यही दर्जी जो था मथुरा का दर्जी बना। भगवान कृष्ण को अक्रूर जी जब लेने के लिए आए तो मथुरा में आकर भगवान कृष्ण धोबी के पास गए सबसे पहले, क्योंकि कृष्ण तो अब जंगल में रहने वाले, गोकुल में रहने वाले थे, और गोकुल में तो केवल धोती और गमछा, गांव में क्या होता है। परंतु अब सिटी में आए, मथुरा शहर में आए, और शहर में तो आप सब जानते हैं सब अप टू डेट होते हैं, तो बोले शहर में आए हैं और सब लोग हमें निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो सिटी के वस्त्र पहनने चाहिए। तो कृष्ण ने सोचा कि पैसे तो है नहीं हमारे पास, क्वचित रजक आयांतम, सामने की दिशा से कुछ रजक कुछ धोबी आ रहे थे। तो कृष्ण ने धोबी को कहा कि हे धोबी, आप मेरे लिए और मेरे भाई दाऊजी के लिए उत्तमानी वस्त्रानी, उत्तम उत्तम वस्त्र दे दो। धोबी कुछ नहीं बोला, बोले उत्तम नहीं दे सकते हो तो रिजेक्शन माल दे दो। तब भी धोबी ने कुछ नहीं दिया। बोले यदि आप हमें वस्त्र देते हो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप माला माल हो जाओगे, आप धन्य हो जाओगे। तब धोबी ने कहा तेरे जैसे हजारों आते हैं। अब धोबी ने सीधा सीधा ना कह दिया होता कि भाई हमें आपको वस्त्र नहीं देना है, तो कृष्ण दूसरे धोबी को पकड़ दे। लेकिन ये धोबी ना कहने की बात दूर रही, कृष्ण को गाली देने लगा। बोले कभी देखा है शहरों के वस्त्रों को, कभी शूट बूट को हाथ भी लगाया है, आए हो वस्त्र पहनने के लिए, चले जाओ वापस अपने गांव में, तुम लोग अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। कभी स्वप्नों में भी ऐसा देखा था, बहुत बहुत अनाप शनाप कहने लगा धोबी। भगवान कृष्ण ने सोचा यदि साइड में बुलाकर मेरा अपमान किया होता ठीक था, सबके बीच में मेरा कचरा कर रहा है, लोगों की दृष्टि में अपना मान क्या रहेगा। कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं किया। कृष्ण को गुस्सा आया, हाथ उठाया और जोर से गाल पर थप्पड़ मारा, धड़ से मस्तक अलग होकर गिर गया, तो भी उसी जगह पर मर गया, मस्तक अलग। मन में प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण ने बहुत लोगों को मारा, कृष्ण ने जितने लोगों को मारा किसी के पास क्रोध नहीं किया। यद्यपि पुतना जो थी कृष्ण को मारने के लिए आई थी, जान से मारने के लिए, परंतु कृष्ण ने पुतना को मारते समय क्रोध नहीं किया था। वो तो हंसते खेलते किसी को हाथ से, किसी को लात से, किसी को घुमा घुमा कर खेलते कूदते हुए मारा। लेकिन कृष्ण ने इस धोबी को क्रोधित होकर, वहां पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि नंद का सूत जो है क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर मारा। और ये धोबी तो कृष्ण को मारने के लिए तो नहीं आया था, केवल कपड़े देने के लिए ना कहा, तो उसमें थप्पड़ मारा धड़ से मस्तक अलग हो गया। पुराणों में बहुत सुंदर कथा है, कृष्ण ने देखा कि ये धोबी त्रेता युग वाला धोबी है। वास्तव में उस धोबी के ऊपर कृष्ण ने क्रोध क्यों किया, इसके पीछे कारण ये है कि वो मथुरा का धोबी त्रेता युग में रामलीला का धोबी था। भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास से वापस लौट गए, अयोध्या के राजा बन गए, बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, तो एक दिन रात को धोबी की पत्नी घर पर आई, धोबी ने उसको घर पर आने नहीं दिया। बिचारी कुछ कारणवश कहीं एक दिन रुक गई थी, नहीं आने दिया, नहीं आ सकती हूं। बोले आने दो स्वामी, मैं कहां जाऊंगी, कहां भटकूंगी। बोले नहीं, जब बहुत बहुत कहा तब धोबी ने कहा कि मैं राम जैसा लंपट थोड़ी ना हूं, मैं राम की तरह स्त्री में आसक्त थोड़ी ना हूं कि तुम्हें अपना लूंगा। राम ने तो सीता कई दिनों तक रावण के पास रही फिर भी अपना लिया, मैं तो पवित्र आदमी हूं। भगवान राम के अनुचर को यह बात पता चली और राम ने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा थे और अपनी प्रजा को उपदेश देने के लिए मजबूर होकर भगवान राम को अपनी प्राण से भी प्रिय सीता को छोड़ना पड़ा। यद्यपि भगवान राम सीता से बहुत प्रेम करते थे, आप जान सकते हैं, जिस सीता को प्राप्त करने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया, कौन बांध सकता है, लाखों लाखों असुरों को मार डाला, काट डाला, उस सीता को भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। परंतु एक धोबी के कारण भगवान को सीता को छोड़ना पड़ा। और इस लीला में तो भगवान राम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परंतु वही धोबी मथुरा में सामने मिला और कृष्ण ने देखा कि ये वही धोबी है जो मेरी पत्नी से अलग कराया था। तो त्रेता युग का क्रोध भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में निकाला और जोर से खींच के मारा धड़ से मस्तक अलग। ये भगवान की लीला जो है लिंक में है। तो उस धोबी के पास से उन्होंने कपड़े तो ले लिए, परंतु वो कपड़े बहुत लंबे लंबे थे, बहुत बड़े थे, इसलिए कृष्ण कुछ आगे गए जहां एक दर्जी की दुकान थी और दर्जी ने कहा कि फिटिंग ठीक नहीं है आपका, लाओ मैं फिटिंग कर देता हूं, क्योंकि फिटिंग का तो जमाना है ना आज। आज देखिए कितना भी अच्छा कपड़ा है, फिटिंग नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। और आज तो न जाने कैसे कैसे फिटिंग निकले हैं, अभी नया नया फिटिंग निकला है टाइट जींस। गांव से जो लोग आते हैं वो तो सोच में पड़ जाते हैं, ये पहना कैसे होगा, कपड़ा राउंड करके इस आदमी को ही सिलाई मशीन पर रख दिया होगा। परंतु स्टाइल है, फिटिंग का जमाना है। और भगवान श्री कृष्ण कोई साधु सन्यासी बाबा जी तो नहीं है, रसिक शेखर है। बोले हाँ फिटिंग चाहिए। बोले नाप लेना होगा। बोले ले लो, हाथ का चाहिए, हाथ का, पांव का। दर्जी ने जी भर के नाप ले लिया भगवान कृष्ण का और सारी इच्छा पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार त्रेता युग में तो इस दर्जी को भगवान को स्पर्श करने का मौका नहीं मिला, परंतु द्वापर युग में मिल गया। भगवान श्री रामचंद्र का बहुत सुंदर विवाह हुआ, परंतु उस धनुष टूटने की आवाज तीनों लोक में फैल गई और परशुराम जी रामायण के एक अद्भुत पात्र है, परशुराम परम क्रोधी। परशुराम जी उस ध्वनि को सुनकर बोले, ये ध्वनि कहां से आई, प्रलय तो नहीं हुआ। उस ध्वनि की आवाज को सुनकर परशुराम जी राजा जनक की सभा में आए, जहां पर यह स्वयंवर लीला चल रही थी। तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। और परशुराम जी भी गौर वर्ण का उनका शरीर है, गोरे रंग के हैं, परंतु क्रोध के कारण लाल लाल हो चुके हैं। सिर पर लंबी जटा है, विशाल छाती है और अद्भुत उनकी भुजाएं हैं। मृग चर्म लपेटे हुए हैं, पूरे शरीर में भस्म लगाई है और परशु समेत कंधे पर भगवान विष्णु का धनुष है। और एक नहीं दो दो तरकस धारण करके आए हैं, हाथ में एक परशु है और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आए कि इतनी लंबी ध्वनि करने वाला इस संसार में है कौन। तो परशुराम जी इस प्रकार से उग्र स्वरूप लेकर राजा जनक की सभा में आए। गोस्वामी कहते हैं, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा।
ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल।
परशुराम जी राजा जनक की सभा में आए, सभी राजा महाराजाओं ने देखा परशुराम आए। सब लोग मन में सोचने लगे, अरे बाप हमारा काल आ गया, क्योंकि 21 बार नक्षत्री कर चुके थे, 21 बार क्षत्रियों का वध कर चुके थे और क्रोधित मूर्ति है। और क्रोधित परशुराम को देखकर सभी राजा महाराजा अपने दोनों हाथ जोड़कर, अपने शस्त्र को छोड़कर परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे, मैं फलाने राजा का पुत्र हूँ, मैं फलाने राजा का राजकुंवर हूँ, आप मेरा ध्यान रखिएगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आप मेरे पर गलत दृष्टि मत रखिएगा। सभी राजा महाराजा परशुराम के चरणों में प्रणाम करने लगे और कुछ राजा महाराजा आपस में बात करने लगे कि जनक जी ने कहा था अपने अपने घर चले जाओ, उस समय चले गए होते तो अब तक घर पर पहुंच गए होते। अब ये काल, ये हमारा बाप हमारे सामने खड़ा है, ये क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है और आज उग्र रूप लेकर लगता है हम सबको मारने के लिए आया है। देखी मही पस कल सकुचाने, बाज जपट जनु लवाल काने।
देख मही पस कल सकुचाने, बाज जपट जनु लवाल काने।
जैसे खेत में बाज को देखकर छोटे छोटे पक्षी छोटी छोटी जगह पर जाकर छिप जाते हैं, वैसे परशुराम को देखकर सभी राजा महाराजा आजू बाजू में छिपने लगे, इसकी दृष्टि हम पर ना आए। उस समय परशुराम जी आए, जनक जी खड़े हुए, विश्वामित्र खड़े हुए और परशुराम जी को कहा कि आपका स्वागत है। और परशुराम ने कहा कि इतने सारे राजा महाराजों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। जनक तुम जानते नहीं हो मैं क्षत्रियो का दुश्मन हूँ, इतने सारे क्षत्रियो को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब जनक जी ने कहा कि मैं मेरे पुत्री का विवाह करना चाहता था। जनक जी ने सारी कथा बताई। स्वयंवर सभा थी और उस सभा में शिव धनुष टूटा। शिव धनुष के दो टुकड़े जब परशुराम ने देखे, परशुराम जी क्रोधित हो गए। मूर्ख जनक, यद्यपि जनक विदेहराज परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी, परंतु परशुराम ने कहा, मूर्ख जनक, इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। जिस किसी व्यक्ति ने शिव धनुष को तोड़ा है मेरे सामने खड़ा कर, और यदि उसे मेरे सामने खड़ा नहीं करेगा मैं सबको मार डालूंगा। बेगी देखाऊ मूड नहीं जाऊं, उलट हूं मही जह नहीं तब राजो।
बेगी देखाऊ मूड नो उलट
इस शिव धनुष को तोड़ने वाले को यदि मेरे सामने खड़ा नहीं किया, जनक जहाँ तक तेरा राज्य है उस राज्य को उलट पुलट कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं परशुराम हूँ। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने सोचा कि ये बहुत क्रोधित हो रहे हैं, चलो मैं जाकर श्याम दाम दंड भेद, किसी भी व्यक्ति को समझाने की चार विधि होती है, भगवान श्री रामचंद्र शांत होकर गए और विश्वामित्र जी ने परिचय कराया कि ये राजा दशरथ के पुत्र राम है। भगवान राम आगे आए और परशुराम जी को कहते हैं कि प्रभु प्रभु ये शिव धनुष कोई तोड़े, ऐसा कार्य तो आपका सेवक ही कर सकता है। इस संसार का साधारण व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता है, आपका दास ही यह कार्य कर सकता है। परशुराम जी और क्रोधित, अरे मूर्ख, दास तो वो होता है जो सेवा करे, सेवक का धर्म है सेवा करना, यह धनुष को तोड़ना यह कोई सेवा नहीं है। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है और आज यदि शिव धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने नहीं आया, मैं पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास गए, प्रभु प्रभु आपने राम को क्यों इंट्रोडक्शन कराया, मुझे भेजो, ये मेरे टाइप का आदमी है, आप मेरी पहचान कराओ, राम को पीछे ले लो। विश्वामित्र ने सोचा कि लखनलाल की ही जरूरत है, यहाँ परशुराम के सामने और कोई ठीक नहीं पाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी गए परशुराम के सामने, जाकर कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, परशुराम जी आग की तरह जल रहे थे और लक्ष्मण जी ने उस आग में घी की आहुति डाल दी। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा कि प्रभु बचपन में तो हम लोगों ने बहुत बहुत धनुरिया तोड़ डाली, मैं और मेरे भाई राम जब छोटे थे तो छोटे छोटे धनुष से हम लोग खेलते थे और बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए और जब इतने सारे धनुष टूटे हमें कोई कुछ नहीं कहा, आज एक धनुष टूट गया और आप इतने गर्म हो रहे हो। परशुराम जी और क्रोधित, अरे मूर्ख, ये शिव धनुष को तू साधारण धनुष समझता है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये महान शिव धनुष है, ये महान है, महान है। तब लक्ष्मण जी कहे, प्रभु अब आपका उत्तर आप ही के तो पास है, आप हमको क्यों पूछ रहे हैं, आप ये तो मान रहे हो ना कि ये धनुष महान है। प्रभु आप ही कह रहे हो कि ये धनुष महान है, बहुत महान है। प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई महान ही हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति से तोड़ नहीं सकता है। परशुराम जी और क्रोधित होते जा रहे, मूर्ख, शिव धनुष को तोड़ने वाले को तू महान कहता है, शिव धनुष को तोड़ने वाला कभी महान नहीं हो सकता है, वो मेरा शत्रु है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वेश से, आपके वस्त्र से लगता है कि आप साधु हो, आप संत हो, आप महात्मा हो। प्रभु साधुओं को वैराग्य अच्छा लगता है, वैराग्य शोभित होता है, आपकी धनुष में इतनी ममता, इतनी आसक्ति क्यों है? साधु तो उसे कहते हैं जो पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाए, धन की आसक्ति से मुक्त हो जाए, समाज की आसक्ति से मुक्त हो जाए, आपकी इस धनुष में इतनी ममता क्यों है? तब परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, लगता है यह धनुष तूने ही तोड़ा है, इसी ने तोड़ा है। लक्ष्मण कहते हैं कि देखो प्रभु, ये धनुष न तो मैंने तोड़ा है, न तो ये राम ने तोड़ा है। आप खामखा हम लोगों के ऊपर दोषारोपण मत करो, हमने ये धनुष तोड़ा नहीं है, हम तो यहाँ रास्ते से जा रहे थे, देखा एक पुराना धनुष पड़ा है, तो मेरे भाई ने सोचा कि ये पुराना है या नया है, जरा कैसा है, तो धनुष को देखने के लिए धनुष को एकमात्र साधारण जैसे उठाते हैं वैसे साधारण हल्के से उठाया, वो धनुष को उठाकर टूट गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? परशुराम अपना परशु आगे करके कहते हैं, अरे मूर्ख, इस धनुष को तोड़कर तू अपने आप को महान साबित करना चाहता है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं? बोले नहीं जानता हूं आप कौन हो, बताइए। परशुराम कहते हैं कि मुझे देखकर इस संसार में गर्भवती स्त्री जब मेरे परशु को देखती है तो वो प्रसव कर देती है, हजारों हजारों कोस दूर लोग जब मेरा मांस नाम सुनते हैं तब कांप जाते हैं और तू निर्भय होकर मेरे सामने खड़ा है, लगता है तू मेरे बारे में जानता नहीं है। मैंने इसी फर्जु से हजारों हजारों क्षत्रियों को मारा है, काटा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप मुझे बार बार फर्जु क्यों दिखा रहे हो, और आप ऐसा सोचते हो कि मैं आपके फर्जु को देख रहा हूं। नहीं, आप मुझे बार बार फर्जु दिखा रहे हो, मैं एक बार भी आपके फर्जु के सामने नहीं देखा। मुनिवर, मैं आपके तिलक के सामने देख रहा हूं और मैं आपकी जनोई के सामने देख रहा हूं। हमारे रघुवंश में गाय के ऊपर, स्त्री के ऊपर, बालक के ऊपर और ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। बार बार परसु दिखा रहे हो, यदि हिम्मत है तो तिलक को पहुंच दो और जनोई को फाड़ डालो। जनोई और तिलक को फेंक कर आप मेरे सामने आओ, तब पता चले ये सुमित्रा नंदन ने किसका दूध पिया है। परशुराम क्रोधित हो गए। बस लगता है तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि युद्ध करना है तो क्षत्रिय बनकर आओ और फिर देखो कि राम के इस अनुज में कितनी शक्ति है। दोनों आमने सामने क्रोधित हो गए। तब राम ने सोचा कि यदि मैं कुछ नहीं किया तो ये दोनों झगड़ने लगेंगे। भगवान श्री रामचंद्र तुरंत परशुराम जी के पास गए और परशुराम के पास जाकर कहते हैं, प्रभु आपका गुनहगार मैं हूं। मेरे द्वारा यह धनुष टूटा है, मैंने इसे तोड़ा है। कौन है तू? प्रभु, मेरा नाम राम है। अच्छा, तू अपना नाम से मेरा नाम जोड़कर सोचता है कि तू मेरे जैसा पराक्रमी हो गया है? केवल नाम रख लेने से कोई पराक्रमी नहीं हो जाता है। परशुराम ने सोचा, परशुराम में भी राम शब्द लगा है। बोले, मेरी तरह राम नाम रखकर तू मेरे जैसा पराक्रमी हो जाएगा? तब भगवान श्री रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भगवान का जो वलकल था थोड़ा सा नीचे उतरा और परशुराम ने देखा, अरे इनके वक्षस्थल में तो भगवान लक्ष्मी जी के चरण का चिन्ह, भृगु जी के चरण का चिन्ह है। लक्ष्मी जी की श्री वस्त्र रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि है। परशुराम समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु साक्षात विष्णु ही अवतार लेकर धारण हुए। परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करने लगे। इस प्रकार से परशुराम जी सोच लिए, समझ लिए कि भगवान का अवतार पृथ्वी पर हो चुका है। वहां पर माहौल शांत हुआ। दशरथ जी को पत्र लिखा गया कि आप आइए, यहां विवाह की तैयारी कीजिए और सीता का ब्याह करके लेकर जाइए। उन दिनों एक रिवाज था, विवाह में वर की माता साथ में नहीं जाती थी। कई कई कौशल्या, सुमित्रा, ये तीनों घर पर हैं। राजा दशरथ गए, बहुत सुंदर विधि से विवाह हुआ। भगवान श्री रामचंद्र सीता के साथ विवाह किए और सीता को विवाह करके घर पर आए, अयोध्या में आए हैं। आप सब जानते हो, हमारे भारतवर्ष में आज भी परंपरा है कि जब कोई दंपति पुरुष और स्त्री का विवाह होता है और विवाह होते ही घर पर आते हैं तो बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को लेकर अपनी मां कौशल्या के पास नहीं गए। भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को लेकर कैकेयी के पास गए। भक्तों, ये सनातन सत्य बात है, भगवान राम अपनी जननी से, अपनी जन्म देने वाली मां से ज्यादा प्रेम कैकेयी से करते थे और कैकेयी भी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम भगवान राम से करती थी। कैकेयी के प्यारे थे राम। पत्नी को लेकर सर्वप्रथम कैकेयी के पास गए। कैकेयी जिस भवन में रहती हैं उस भवन का नाम है कनक भवन। उनके पिता ने यह भवन बनाकर दिया था, सोने का भवन। आज भी अयोध्या में आप जाते हो तो राम जन्मभूमि के बाजू में ही यह भवन है। सोने के महल में रहती थी कैकेयी। राम और सीता कैकेयी के भवन में गए, प्रणाम किए। भक्तों, बुद्धिमान व्यक्ति को जब कोई बहू घर पर आती है तो उस बहू को पहचानने में देर नहीं लगती है। जो बुद्धिमान होते हैं वो घर के प्रांगण में प्रवेश करते ही बुद्धिमान समझ जाते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। कैकेयी समझ गई कि वाह, परम सुसंस्कृत नारी है। और वैसे सीता के साथ कैकेयी ने कुछ बात तो नहीं की, परंतु सीता ने जो वस्त्र पहने थे, जो आभूषण पहने थे, वस्त्राभूषण अलंकार, उस वस्त्र को देखकर पूरा पूरा अंदाज आ गया कि यह सीता कितनी सुसंस्कृत है। सीता जी के वस्त्र की शोभा भी रामायण में वर्णन है, इतने सुंदर वस्त्र और इतने मर्यादिक वस्त्र पहने थे कि सीता का एक भी अंग दिख नहीं रहा था। ये मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी भी मर्यादा में है। अपने हाथ को ढके हुए, अपने पांव को ढके हुए, एक अंग भी दिख नहीं रहा था, मर्यादा में। परंतु आज तो घोर कलयुग आ रहा है, धीरे धीरे वस्त्र कम होते जा रहे हैं। संसार में लोग कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पूछा जाए प्रगति क्या है, जितने छोटे कपड़े हो रहे हैं उतनी प्रगति है, जितने कम पहनते हैं उतने ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, ये प्रगति नहीं, ये दुर्गति है। जो लोग नंगे रहना चाहते हैं, जो लोग अपने वस्त्र को ढक कर रखना नहीं चाहते हैं, अपने वस्त्र को दिखाना चाहते हैं, भगवान मरने के बाद उसे पेड़ और वृक्ष बनाते हैं। कपड़े नहीं पहनने हैं तो मनुष्य क्यों बने हो, वृक्ष बन जाओ और नंगे नंग धड़ंग खड़े रहो। भगवान बहुत कड़ी सजा देते हैं भक्तों। इस संसार में सबसे दुखमय योनि यदि कोई है तो वह वृक्ष की। 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा दुख वृक्ष को मिलता है, एक जगह पर खड़े रहता है, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो। इसलिए वस्त्राभूषण मर्यादा में होने चाहिए, एक अंग भी दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो यदि कोई स्त्री यदि ठीक से वस्त्र नहीं पहनती है और उनका अंग दिखता है तो लाखों लोगों की काम वासना की दृष्टि उन पर पड़ती है, और वह लाखों लोग की काम वासना की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वह काम वासना उस स्त्री में आ जाती है। यह आंतरिक प्रभाव है। जैसे गर्मी की ऋतु में जिस व्यक्ति को आंख आती है, आंख आना जानते हैं, पानी निकलता है, जिस व्यक्ति को आंख आई है वह साधारण व्यक्ति के सामने देखता है तो उसको भी आंख आ जाती है, इसलिए चश्मा पहनते हैं। एक आंख आने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने देखता है तो आंख आ जाती है, तो लाखों लोग काम वासना की दृष्टि से जब देखते हैं तो क्या वह प्रभाव उसके अंदर नहीं आ सकता है? अवश्य आता है। इसलिए मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। अरे वस्त्राभूषण ऐसा होना चाहिए कि कामी से कामी व्यक्ति भी यदि किसी स्त्री के ऊपर दृष्टि डाल दे तो डालकर उसके मुंह से निकल जाना चाहिए, नहीं नहीं, ये तो मां है, ये तो हमारी बहन है, ये तो शक्ति है, ये तो देवी है, इस प्रकार से संबोधन हो जाना चाहिए, ऐसे वस्त्राभूषण होने चाहिए। ये तो अच्छे पुरुषों को भी बिगाड़ने वाली हो गई है, मर्यादा होनी चाहिए। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा चल रही है, इसलिए एक बात मैं आपको बार बार कहता हूं कि जीवन में सब कुछ है परंतु मर्यादा नहीं है तो यह जीवन कुछ काम का नहीं है। बहुत सुंदर, आपके पास धन हो सकता है, गाड़ी बंगले नौकर जाकर सब कुछ है, परंतु मर्यादा नहीं है, जीवन कुछ काम का नहीं है। अक्सर दृष्टांत देता हूं, मान लो आपको कोई एक गाड़ी दे दे, मर्सिडीज बेंज, और आपको कहे कि आप इस गाड़ी को चलाइए। आप गाड़ी को चला रहे हो, 200 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, और गाड़ी देने वाले का आपको मोबाइल फोन आए, आपको गाड़ी कैसी लग रही है? आप कहोगे बहुत अच्छी, 200 की स्पीड में चल रही है। बोले स्टेयरिंग कैसा है? बहुत अच्छा। बोले टायर कैसा है? बहुत अच्छा। रंग कैसा है? बहुत अच्छा। अंत में वो कहे गाड़ी देने वाला कि संभाल कर चलाना, गाड़ी में ब्रेक डालना भूल गए हैं। क्या होगा? कितना भी अच्छा रंग हो, कितना भी अच्छा टायर हो, कितनी भी अच्छी स्पीड हो, कितनी भी अच्छी सीट हो, परंतु गाड़ी में ब्रेक न हो तो वह गाड़ी कुछ काम की नहीं है। उसी प्रकार भक्तों, कितना भी अच्छा भगवान ने हमको शरीर दिया, हाथ दिया, पांव दिया, आंख दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, परंतु जीवन में यदि मर्यादा नहीं है तो यह जीवन कुछ काम का नहीं है। उस बिना ब्रेक की गाड़ी की तरफ बेकार है वह जीवन। जैसे गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं तो एक्सीडेंट होता है, वैसे जीवन में यदि मर्यादा नहीं तो एक ना एक दिन जीवन का पतन होता है। मर्यादा होनी चाहिए। सीता ने जैसे ही प्रणाम किया, रामायण में वर्णन है, उसी समय कैकेयी ने अपने घर का जो भी माल सामान और घर की जितनी भी चाबियां थी वह सारी चाबी सीता के हाथ में दे दी। सीता, आज तक मैं इस सोने के भवन में, सोने के बंगले में रहती थी, परंतु आज मैं तुम्हें कनक भवन दान में दे रही हूं। दान में दे दिया। आजकल तो किसी को प्रणाम करते हैं तो 50 रुपया देते हैं, 100, 200, ज्यादा से ज्यादा 500 की नोट दे देते हैं, परंतु सीता को देखकर, सीता की शालीन मर्यादा को देखकर कैकेयी इतनी प्रसन्न हो गई, पूरा घर ही दे दिया। आज से बेटी तेरा घर है। संसार में कई बहू कंप्लेंट करती हैं कि हमारी सास हमको चाबी का जोड़ा देती ही नहीं है, अपने अपने पास ही रखती है, अपने कमर में ही डाल कर रखती है। जैसे कैकेयी ने तो तुरंत दे दिया था, ये हमारी सास तो हमें दे ही नहीं रही है, सब अपने कमर में डाल कर घूमती है। परंतु आप सोचो, आप सीता की तरह हो? सीता जैसी मर्यादा है? शालीन मर्यादा। इस प्रकार भगवान राम सीता का प्रवेश हुआ, सबको प्रणाम किया और बहुत सुंदर अयोध्या में सुंदर वातावरण बनाया। स्वामी जी कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान राम विवाह करके आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य निरंतर आनंद ही आनंद बह रहा है, सब लोग आनंदित हैं। भुवन चारि दश भूधर भारी, सकृति मेध बरस ही भार। चारों ओर सुख है, जितने भी किसान हैं सब किसान आनंद में हैं। जो लोग जितनी बारिश चाहते हैं उतनी बारिश उनके खेत में होती है। समुद्र रत्न के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते हैं, मात्र लेकर पहनने की आवश्यकता है। दैविक दैहिक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का ताप दुख क्लेश किसी भी प्रकार का नहीं, सब लोग सुख है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि सबके घर पर आ चुकी है। उमगी अवध अम्बुधि कहूं आई, आज अयोध्या में आनंद ही आनंद, अयोध्या में आनंद बह रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा, आज पूरी अयोध्या आनंद में है, परंतु संसार का नियम आनंद के बाद दुख, दुख के बाद सुख, मात्रा स्पशास्तु कौनते चलता रहता है। प्रकरण बदलता है, यहां पर बाल कांड समाप्त हुआ, अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड प्रारंभ होता है उस सभा से, जिस सभा में राजा दशरथ राज सिंहासन पर बैठे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। राजा दशरथ सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जी, क्षमा कीजिए वशिष्ठ जी तो नहीं थे परंतु मंत्री इत्यादि प्रजा उस सभा में बैठी थी। राजा दशरथ सभा भर कर बैठे थे, उस समय राजा दशरथ का मुकुट जो था थोड़ा हिल गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। राजा दशरथ ने अपने अनुचरों से एक कांच मंगाया और कांच मंगाकर वदन विलोकी मुकुट राम कीना। जब उस कांच में राजा दशरथ ने अपने मुकुट को ठीक किया, उस समय राजा दशरथ ने देखा कि कान के ऊपर एक बाल सफेद हो गया है। राजा दशरथ ने दर्शन किया, नजदीक से बाल सफेद हो गया। जैसे ही राजा दशरथ ने अपने बाल को सफेद देखा, तुरंत राजा दशरथ के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। दुख क्या था? हृदय बहुत दुख लाग, गोस्वामी जी कहते हैं हृदय में बहुत दुख लगा। क्यों? क्यों? बीत गयो दिन भजन बिना। अरे मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया। भयउन विषय विराग और भवत बसत वा चौथपन, जीवन का चौथापन आ गया। अब तो मरने की अवस्था आ गई, जीवन का लंबा समय बीत गया, बाल सफेद हो गए, परंतु संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान में अनुराग नहीं हुआ। राजा दशरथ को यह दुख उत्पन्न हुआ कि अरे मेरे जीवन में मैंने भगवान की भक्ति तो की ही नहीं, केवल ये परिवार और राजसभा में ही पड़ा रहा। अब राजा दशरथ के मन में यह इच्छा हुई कि अब मैं भक्ति करूं। भक्तों, हम सबके जीवन में ऐसे दिन आते हैं, बाल तो सबके जीवन में सफेद होने वाले हैं, कुछ के तो हो ही गए हैं। तो राजा दशरथ को आदर्श बनाकर, जब वैसे तो भक्ति तो बचपन से ही होनी चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं कोमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से भक्ति करो, परंतु बचपन से भक्ति नहीं कर पाए, कम से कम बाल सफेद हो गए, अब तो भक्ति करो। परंतु ये वास्तव में ये बाल सफेद होना भगवान के द्वारा भेजी हुई एक नोटिस है। पुलिस वाले जब किसी को पकड़ने के लिए आते हैं, कोर्ट वाले जब किसी को जेल में डालना होता है तो नोटिस भेजते हैं, ऐसे सीधा सीधा नहीं पकड़ कर चले जाते हैं, वैसे नोटिस भेजते हैं। तो भगवान के द्वारा भेजी हुई है नोटिस है, बाल सफेद हो जाना, अब आप बिल भर दो, नहीं तो फिर हमारे दूत आएंगे, अब आप भजन कर लो। परंतु कुछ लोग बाल सफेद हो जाते हैं, सलून में जाकर काला करा देते हैं, भजन का नहीं सोचते हैं। इस संसार में भी बाल सफेद होने पर लोग चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, जैसे राजा दशरथ हुए। लेकिन राजा दशरथ को चिंता क्या हुई, मैं भक्ति नहीं किया, अब मुझे भक्ति करना है। और संसार के लोगों को क्या चिंता होती है, अब 50 रुपया डाई का बिगड़ जाएगा मेरा, सलून में जाना पड़ेगा। तो राजा दशरथ को वैराग्य हुआ, मुझे भजन करना है। तुरंत राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए, कहा प्रभु प्रभु आप अब ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मैं भजन करूं और मेरे 4 पुत्रों में से जो बड़ा पुत्र है वो राज करे, राज कारोबार संभाल ले, अभी बड़े हो गए हैं, मैं बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी आप मुहूर्त निकालिए, योग्य वार नक्षत्र कहिए, कब राम का राज तिलक कर सकते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, राम का राज तिलक करना है और उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता कभी नहीं। बेगी विलंब न कर ही नृप, समझी सुबह समाजु, सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। अरे राम को राजा बनाने के लिए योग्य मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, जिस मुहूर्त में राम राजा बनेंगे वह मुहूर्त परम सौभाग्यशाली हो जाएगा, वह मुहूर्त ही शुभ हो जाएगा, वह मुहूर्त धन्य हो जाएगा, वह वार धन्य हो जाएगा, वह नक्षत्र धन्य हो जाएंगे जिस वार नक्षत्र और मुहूर्त में राम राजा बनेंगे। राजवी आप राजन आप देरी मत करो, लेट मत करो, आप तुरंत जाओ और राम को तुरंत राजा बनाओ। और राजा दशरथ ने सोचा कल मैं राम को राजा बना दूंगा। अपने राज्य में आए, आकर सुमंत्र जी को कह दिया, सुमंत्र जी कल सुबह राम को राजा बनाना है, आप तैयारी शुरू कीजिए। बहुत सुंदर पटाखे लगाए गए, पूरे अयोध्या में बहुत सुंदर राम राज तिलक की तैयारी हो रही है। सब जगह पर सबके मन में, सारी प्रजा में उत्साह है, हर्ष है, कल राम राजा बनेंगे। परंतु राम राजा बनेंगे यह खबर जब देवलोक में पहुंची, देवताओं के समाज में खलबली मच गई। सभी देवता साथ में मिलकर सोचने लगे कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तब तो अयोध्या में फिक्स हो जाएंगे, फिर वो जंगल में कभी जाएंगे नहीं, ऋषि मुनियों का उद्धार कैसे होगा, असुरों का संहार कैसे होगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, राम को कैसे भी करके अयोध्या से बाहर निकालना है। लेकिन ये काम करेगा कौन? सारे देवता मिलकर सोच रहे हैं काम करेगा कौन, करेगा कौन। उस समय सभी देवताओं ने सरस्वती देवी को बुलाया, या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपे संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या करना है? बोले राम को कैसे भी करके अयोध्या से निकालना है, कुछ भी हो जाए कल राम राजा नहीं होने चाहिए, नहीं तो संसार का उद्धार नहीं होगा। सरस्वती ने कहा इतना बुरा काम मुझसे करवाओगे? बोले ये बुरा कार्य नहीं है, ये अच्छा कार्य है, लोगों का हित के लिए कार्य करना है। बोले जाओ और किसी की जिह्वा के ऊपर बैठ जाओ, किसी के जुबान के ऊपर बैठकर कुछ भी बुलवा कर आप कल राज तिलक बंद करवा दो। तब देवी सरस्वती ने कहा कि हे देवताओं, जिस व्यक्ति ने अयोध्या में सरयू का पानी पिया है उसकी बुद्धि में कभी बदल नहीं सकती हूं, वो लोग पवित्र हो चुके हैं। मैं अयोध्या वासियों के किसी भी बुद्धि के ऊपर बैठकर, जीवा के ऊपर बैठकर उसकी जीवा को घुमा नहीं सकती हूं, असंभव है, ये कार्य हो नहीं सकता है। देवताओं ने विनंती करते हुए कहा आप जाओ तो सही, जरा देखो तो सही, कुछ तो हो सकता है। देवी सरस्वती आकाश के मार्ग से अयोध्या में आई, देखा ये सब लोग परम पवित्र लोग हैं, परंतु उस अयोध्या में राजा दशरथ के महल में एक पात्र ऐसा मिला जिसकी बुद्धि वह घुमा सकती थी। और ये पात्र क्योंकि अयोध्या का पात्र नहीं था, ये क्या पता न जाने कहां से आई थी, आगे चलकर इंक्वायरी, भरत जी जब आएंगे ना तब इंक्वायरी करेंगे कि मेरी मां की बुद्धि बदलने वाली ये मंथरा जो है, ये है कौन, ये आई कहां से, ये कहां रहने वाली है, इसका कुल कौन सा है, लेकिन कोई खबर नहीं मिला। कहां के रहने वाली, किस गांव की, कहां से आई है, किसकी पुत्री, कुछ नहीं। शास्त्र मौन है इसके लिए। सरस्वती देवी ने देखा कि ये जो है ये अयोध्या की नहीं है, बाहर से आई है, मंत्रा की जुबान के ऊपर मंत्रा की बुद्धि को घुमाया। और उसी समय मंत्रा कैकेयी के पास गई, कैकेयी के पास जाकर अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, देवी आज हमारे राज्य में अनर्थ हो गया। कैकेयी ने पूछा हुआ क्या, वो तो बता। बोले क्या नहीं हुआ ये बताओ। बोले क्या हुआ? बोले कल राम राजा बनने वाले हैं, अनर्थ हो गया। कैकेयी ने कहा पागल, राम राजा बनने वाले हैं और तू उसे अनर्थ कहती है? अरे राम राजा बनने वाले हैं, इससे खुशी की बात मेरे जीवन में और कोई है ही नहीं। राम राजा बने, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, इसमें क्या अनर्थ है, इसमें कोई अनर्थ नहीं है। कैकेयी तो राम से बहुत प्रेम करती थी। परंतु भक्तों, बुरी संगति का असर जो है व्यक्ति पर हो ही जाता है। आप कितने भी दृढ़ हो, परंतु बुरी संगति यदि आपने कर ली। अब देखिए कैकेयी भगवान राम के प्रति कितनी दृढ़ है, परंतु गलत संगति। मंत्रा ने कैकेयी को कहा, राम राजा बनने वाले हैं, दशरथ ने आपको एक बार भी पूछा? बोले नहीं। बोले इसमें पूछने की क्या जरूरत है? बोले ये प्लान कई महीनों से चल रहा है, झूठ बोल रही है ये। कुछ लोग होते हैं झूठ बोलते हैं। बोले कई दिनों से प्लान चल रहा है राम को राजा बनाने के लिए, और आपको एक सत्य बात बताती हूं, यदि राम राजा हो गए ना तो राम की मां कौशल्या राजमाता हो जाएगी, और फिर तुम दोनों उनकी दासी बन जाओगी। धीरे धीरे करके मंत्रा का जो प्रभाव है कैकेयी के अंदर आ रहा है। अच्छा बहना सखी, तू मेरा इतना अच्छा हित सोचती है, तो अब मैं क्या करूं? बोले करूं क्या, कैसे भी करके राम को कल राजा मत बनाओ। बोले मेरे हाथ में कहां है राम को राजा बनाना। बोले याद करो, दशरथ ने तुमको दो वरदान दिए थे और तुमने वो पेंडिंग रखे हैं। तुमने कहा था जब जरूरत होगा तब मैं मांग लूंगी, बस समय आ चुका है, मांग लो दोनों वरदान। बोले अच्छा। बोले देखो दशरथ को बुलाओ, और सबसे पहले दशरथ को राम की शपथ खिलाना, राम की कसम खिलाना, क्योंकि वह राम की कसम झूठी नहीं खाते, और फिर उसे मांग लेना कि कल राम को नहीं भरत को राजा बना दो। ठीक है, लेकिन तुम भूल मत करना, साथ ही साथ दूसरा वरदान भी मांग लेना। बोले क्या? बोले यदि भरत राजा बन गया तो राम भरत के साथ युद्ध करेगा, झगड़ा करेगा, और राम कैसे भी करके राजा बनना चाहेगा, इसलिए एक काम करो, भरत को राजा बनने के लिए कह दो, और दूसरा वरदान मांगो कि राम 14 साल के लिए वन में चला जाए, ताकि भरत को डिस्टर्ब ना करे, आपके पुत्र को डिस्टर्ब ना करे। बोले कोई बात नहीं। कई कई पूरी पूरी मंत्रा के कवरेज एरिया में आ गई, पूरी पूरी कई कई की जो बुद्धि थी पलट गई। भक्तों, इस संसार में यदि संग करना है तो किसी अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। रामायण में यह सिखाया गया है, यह शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति कितना भी दृढ़ हो परंतु गलत संग हो जाए तो उसका पतन हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, असत संग त्यागा यही वैष्णव आचार। और उसमें भी किसी को यदि भक्त बनना है तो असत लोगों का संग त्याग देना चाहिए, भक्तों का ही संग करना चाहिए। असत संग करने वाले का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। मंत्रा के संग के कारण कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी है, और कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठी। किसी ने राजा दशरथ को समाचार दिया, राजन आपकी पत्नी कोप भवन में बैठी है। भक्तों, कोप भवन का अर्थ है पहले के जमाने में राजा महाराजा, जैसे आज कुछ लोग अपने घर पर बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, अटैच बाथरूम बनाते हैं, पहले के राजा महाराजा कोप भवन भी साथ में बना लेते थे। कोप भवन का अर्थ यह है कि राजाओं की बहुत पत्नियां होती थी, और जिस पत्नी को कुछ तकलीफ होती थी वह कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी। राजा समझ जाते थे कुछ गड़बड़ है, राजा जाते थे और फिर उनका दुख दूर करते थे। ऐसे कोप भवन में जाकर कैकेयी बैठ गई। राजा दशरथ तैयारी कर रहे हैं, वो यहां पर लगाओ, यहां पर तोरण लगाओ, यहां पर ये लगाओ। राजा दशरथ बहुत सुंदर तैयारी में लगे हैं, और उस समय एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि आपकी पत्नी कैकेयी कोप भवन में है। राजा दशरथ के हृदय में वहां की ये स्त्रियों का स्वभाव भी, जब कोई अच्छा अवसर आता है तभी ये कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। राजा दशरथ गए कोप भवन में, ये पुरानी फटी हुई साड़ी पहनकर अलंकार श्रृंगार को निकाल कर बैठी थी। राजा दशरथ ने कहा कि देवी क्या हुआ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, और कल इतना सुंदर अवसर है, कल हमारा राम राजा बनने वाला है, और तुम इस प्रकार से गोप भवन में बैठी हो, क्या तकलीफ है, क्या चाहिए? वास्तव में गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि राजा दशरथ कामना में आविष्ट होकर कई कई को कह रहे हैं कि तुम जो मांगो तुम्हारी इच्छा में पूरी कर दूंगा। राजा दशरथ के हृदय में काम है और कई कई के हृदय में लोभ है। काम और लोभ जो है ये नरक के द्वार है। काम और लोभ और क्रोध जिसके हृदय में आ गया निश्चित वह नरक में जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, राजा दशरथ बार बार मनाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूं, तुम्हें यदि किसी ने परेशान किया है मैं उसका मस्तक उतार लूं, मैं तुम्हारे चरणों में हूं, जो चाहिए वो मांग लो। कई कई कहती है मांगो मांगो मांगो, बहुत बार कहते हो, कभी तुमने दिया है? बोले क्या चाहिए? वो दो वरदान मुझे चाहिए। बोले वो तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने याद करा दिया, बोलो दो वरदान क्या चाहिए? तब कई कई मांगती है।